This is an ABP Life podcast.
भारत 2023 में तीसरा सबसे प्रदूषित हवा वाला देश रहा। स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQAir की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के मुताबिक बांग्लादेश दुनिया में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड हवा वाला देश रहा। 134 कंट्रीज की इस लिस्ट में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है, हम तीसरे नंबर पर हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली में सबसे खराब हवा है, सबसे खराब हवा वाली राजधानी हमारी नई दिल्ली है। बिहार का बेगूसराय दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगर है, मेट्रोपॉलिटन है, जबकि 2022 में इस लिस्ट में बेगूसराय का नाम तक नहीं था। आइए बातचीत करते हैं, आखिर ऐसे हालात हमारे भारत के क्यों हैं? हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज एक स्पेशल गेस्ट जुड़ने जा रहे हैं ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। मैं मानसी हूँ आपके साथ लेकर के आज का FYI। हमारे साथ में जुड़ने जा रहे हैं,
मेरा नाम पवन कुमार जोशी है, मैं प्रोफेसर हूँ स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली।
थैंक यू सो मच एबीपी लाइव पॉडकास्ट के साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि कभी ना कभी ये सवाल उठ जाते हैं कि कोई रिपोर्ट क्रेडिबल है या नहीं, क्या उसकी अहमियत है कि हम उस आंकड़ों पे बिलीव करें या नहीं। तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी, स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQAIR ये कितनी क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है, और जो इसकी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है ये कितनी वैलिडेबल या कितनी क्रेडिबल है?
देखिए, जो ये रिपोर्ट आती है स्विस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि वो विश्व का एयर क्वालिटी का एक मापन करते हैं, और उसके अनुसार जितने भी देश हैं और जितने भी शहर हैं उनको श्रेणीगत रूप से बताते हैं कि कहाँ पे कितना पॉल्यूशन है। अच्छी ये है कि ये विश्व का एक मापक देता है जिससे हमें एक बहुत अच्छे इंडिकेटर्स मिलते हैं एयर पॉल्यूशन के बारे में। लेकिन अगर हम इन आंकड़ों को ध्यान से देखने की कोशिश करें तो तब हमें ये लगता है कि ये एक एग्रीगेटेड डेटा है जो ग्लोबली कलेक्ट किया गया है, जिसमें बहुत सारे बायसेस हो सकते हैं कि किस तरह के सेंसर्स कहाँ पे हैं, किस तरह का डेंसिटी है सेंसर्स की, और डेटा किस तरह से कलेक्ट होके एग्रीगेट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं साइंटिफिकली टेक्निकली जब हम उसमें बात करते हैं तो शायद उसमें और शोध और रिसर्च करने की आवश्यकता है कि हम जो वो वैल्यू बता रहे हैं उसको हम देखें कि वो कितनी सही है, वो आंकड़े कितने सही हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर एक पैटर्न की बात करें तो ये पैटर्न के लिए हम इसको जरूर देख सकते हैं जो हमें सचेत करता है कि वायु प्रदूषण किस दर से बढ़ रहा है।
जी, यानी कि हम इसे कुल मिला के सीरियसली मान सकते हैं।
जी
ओके, अगले सवाल पर आऊंगी। इंडिया हैज इमर्ज्ड एज द वर्ल्ड्स थर्ड मोस्ट पॉपुलेट कंट्री, ऐसा इस रिपोर्ट में लिखा है। अगर हम पिछले कुछ सालों से कंपैरिजन करें इंडिया की सिचुएशन को, आप अगर वो बताना चाहें किस तरह सुधरी है कि खराब हुई है कि क्या है?
देखिए, ग्रॉसली जब हम लोग देखते हैं और खासतौर इस रिपोर्ट में जिस तरह से आंकड़े आए हैं तो हमें लगता है कहीं ना कहीं जो कंसंट्रेशन है उसमें कुछ कमी आई है जरूर। लेकिन जब हम इंडिविजुअल सिटीज की बात करते हैं, जैसे रिपोर्ट में नई दिल्ली के बारे में जिक्र किया गया है, रिपोर्ट में बेगूसराय के बारे में जिक्र किया गया है, तो वो कहीं ना कहीं चिंता का कारण भी बनते हैं। क्योंकि जैसे दिल्ली में ही हम देखते हैं, पिछली रिपोर्ट में लगभग 89.1 वैल्यू थी और जो अभी हमारी 92.7 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर की वैल्यू आई है, तो ये एक चिंता का कारण है। और यदि हम पूरे हिंदुस्तान में परसेंटेज वाइज देखें और खासतौर जो WHO से कंपेयर करते हुए देखें तो तब हमारे लिए स्थिति और भी भयावह नजर आती है, जिसमें हमें दिखता है कि 96% जो इंडियन पॉपुलेशन है उनके लिए जो वायु जो उपलब्ध है उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है जो WHO जिस तरह से रिकमेंड करता है।
बिल्कुल, इससे पहले कि हम WHO रिकमेंडेशन की बात करें कि आखिर वो लेवल क्या है, मैं चाहूंगी, चूंकि आपने जिक्र भी किया माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक, तो आम इंसान चूंकि इसे समझ सके हमारे इस कॉन्वर्सेशन को, मैं चाहूंगी अगर आप हमें समझा सकें कि ये PM क्या होता है जो जनरली इस रिपोर्ट में भी यूज किया गया है फॉर कॉन्सेंट्रेशन, और ये माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर जो आप बोल रहे हैं इससे एक आम आदमी क्या समझे?
देखिए, जब भी हम एयर की क्वालिटी की बात करते हैं तो उसमें डिफरेंट क्राइटेरिया पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो जैसे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, उसी तरह से एक और इंडिकेटर है जिसको हम बोलते हैं PM, और उसका फुल फॉर्म है पार्टिकुलेट मैटर। इसको आप सरल शब्दों में समझ सकते हैं कि जो धूल के जो कण वायु में जो होते हैं उसके लिए पास, और जब इसका मापन करते हैं तो ये दो साइजेस में होता है, एक होता है PM10, दूसरा PM2.5। जो PM2.5 है ये बहुत ही छोटा साइज है जो हमारे लंग्स में और लंग्स के अंदर एल्वियोली तक एंटर कर जाता है, और जिसके कारण हमें सांस से रिलेटेड काफी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, और ये बहुत ही घातक माना जाता है मनुष्य के लिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लंग्स में सूजन की प्रवृत्ति को जन्म देता है, जिसके कारण ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज, और ये ब्लड में भी बहुत बार कॉम्प्लिकेशंस डेवलप करता है। तो ये जब भी मनुष्य के स्वास्थ्य की बात आती है तो PM2.5 को बहुत ही सीरियसली देखा जाता है।
जी, और हमारे इंडिया की एयर क्वालिटी का इस रिपोर्ट में जिक्र है कि एवरेज एनुअल PM2.5 कॉन्सेंट्रेशन आया है।
जी, अब इसमें आप ये देखिए कि जो यूनिट इसकी है वो बोलता है माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर।
जी,
इसका अर्थ ये है कि अगर आप अपने आसपास से 1 क्यूबिक मीटर हवा को टक कर लें और उसमें गणना करें कि कितने उसमें पार्टिकुलेट मैटर हैं, तो उसकी संख्या को ये बताता है। और जिस तरह से आपने बताया कि इस बारी की रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि जो वैल्यू एवरेज वैल्यू कंट्री की जो आई है वो आई है 54.4 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर।
जी जी, अब इसी के साथ अब मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी कि WHO की गाइडलाइन क्या कहती है, WHO रिकमेंडेशन लेवल क्या है?
WHO बात करता है 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर की, जो बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है, और हम लोग पिछले सालों में देखते आए हैं कि WHO उसको रेगुलर रिवाइज करता है। एक समय इसकी वैल्यू 12 हुआ करती थी, फिर 10 होती है, आज की तारीख में जब हम इसकी गाइडलाइंस देखते हैं तो ये 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर की बात करता है। और अगर हम इसी रिपोर्ट को अगर वो बेस बनाएं तो हम देखते हैं कि मुश्किल से विश्व में 6-7 देश ऐसे हैं जो WHO की गाइडलाइन को मीट करते हैं, अदरवाइज जितने रिमेनिंग कंट्रीज हैं, इनफैक्ट 10 कंट्रीज ऐसी हैं जितने 134 देशों में इस तरह का अध्ययन किया है इन्होंने, उसमें से 124 देश जो हैं लगभग 92%, उन सभी में WHO की गाइडलाइन के अनुसार काफी अधिक PM2.5 की मात्रा देखी है।
यानी कि जो नंबर है पीएम का वो जितना छोटा उतना ही खतरनाक, जितना बड़ा उतना ही अच्छा?
नहीं, ऐसा नहीं कहूंगा मैं। PM2.5 जो है माइक्रोन्स, वो एक साइज है, उससे वो आपके लंग्स फेफड़ों को एकदम से अफेक्ट करता है जो हमें पता भी नहीं चलता है, लेकिन बड़ा होता है तो उसको आपकी श्वास नली में और जब आप रेस्पायर करते हैं तो उसमें आपको पता चल जाता है। दिक्कत क्या है इसकी कंसंट्रेशन की, कि इसका कंसंट्रेशन जिसको हम माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर में माप रहे हैं कि 1 क्यूबिक मीटर हवा में कितना मात्रा है इन माइक्रोग्राम पार्टिकुलेट मैटर की, जितना ज्यादा वो वैल्यू होगी उतना ज्यादा दिक्कत है।
एग्जैक्टली।
बांग्लादेश और पाकिस्तान से ही हम अच्छे चल रहे हैं, अब ये कुछ अच्छी बात तो नहीं है। बिहार का बेगूसराय सबसे प्रदूषित मेट्रोपॉलिटन सिटी है, दिल्ली हमारे देश की जो राजधानी है वो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है, तो अगर आप बता सकें दिल्ली, क्योंकि राजधानी के बारे में बात करना जरूरी है, कि आखिर वो क्या गलतियां हैं जिसकी वजह से दिल्ली का ये हाल है?
देखिए, जब इस रिपोर्ट को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो ये बताता है कि जितना साउथ ईस्ट एशिया है या सेंट्रल साउथ एशियन कंट्रीज हैं, यहाँ पे ट्रांसबाउंड्री हेज और क्लाइमेटिक कंडीशंस के नाते भी एयर पॉल्यूशन के होने के चांसेस ज्यादा हैं।
ओके।
जब आप स्पेसिफिकली दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली एक इंटरलॉक सिटी है जिसके आसपास ना समुद्र है ना कोई बड़ी नदी है, जो यमुना है वो बहुत ही प्रदूषित है, लेकिन उसके अलावा जब हम देखते हैं तो डस्ट जो है रोड में जो डस्ट होती है या कंस्ट्रक्शन की जो डस्ट है, फिर उसके बाद जो वहीकुलर पॉल्यूशन है, ये तीनों फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दिल्ली के मामले में, जिसके कारण एयर पॉल्यूशन आप देखते हैं हमेशा अधिक रहता है, तो और सर्दियों के मौसम में हमको दिखता है कि ये ज्यादा है। तो इस भूभाग को यदि आप विश्व के देखें तो ट्रांसबाउंड्री हेजेस और यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन एंड डस्ट के नाते इस तरह का पॉल्यूशन ज्यादा होता है, और महानगरों को यदि आप देखें तो इन एडिशन टू दिस जो हमारा व्हीकुलर पॉल्यूशन जो है वो और एडिशन करता है। फिर उसके बाद आउटस्कर्ट में आप देखते हैं आपके पास इंडस्ट्रीज हैं, कुछ दिल्ली में तो कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जो इंडस्ट्रियल जोन हैं, जैसे नारायणा की तरफ आप जाते हैं तो तब आप पता है कि इंडस्ट्रीज का भी इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है इन टर्म्स ऑफ एयर पॉल्यूशन।
जी, और ये तो बात हुई दिल्ली की और मेट्रोपॉलिटन सिटीज की या शहरों की, इंडिया की एज अ होल अगर हम बात करें तो आपकी क्या राय है कि इंडिया की एयर क्वालिटी एज अ होल इतनी खराब क्यों है?
देखिए, इंडिया यदि हम देश की बात करते हैं तो स्टिल यहाँ पे काफी इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जो है उसके कारण भी काफी पॉल्यूशन का हमें इंडिकेटर मिलता है। उसके अलावा जो डस्ट पार्टिकल्स जो है, जो सॉइल डस्ट जो है, उसके नाते एयर की क्वालिटी थोड़ी सी हम लोग देखते हैं कि वो भी कंट्रीब्यूट करता है एयर की क्वालिटी को खराब करने में। तो ये मोटे तौर पर ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये एड ऑन करते हैं एयर पॉल्यूशन पे। फिर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं हमारी, हमारे पास एक बिल्कुल स्पेसिफिक सीजन है मानसून का जब बारिश होती है, और लोग जो वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस जो हैं, जो डस्ट स्टॉर्म्स जो आते हैं या जो हेजेस जो आते हैं उसके कारण भी बहुत बार अफेक्टेड रहते हैं। तो ये सारे मोटे तौर पर यहाँ की एयर क्वालिटी कंडीशंस को खराब करते हैं, और इनको सुधारने के लिए शायद यदि हमारे पास ज्यादा जंगल हो और या जो एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं उनमें इस तरह की क्रॉप्स लगाई जाए जो मैक्सिमम पीरियड को सॉइल को अरेस्ट कर सकें, तो शायद किसी तरह के एयर पॉल्यूशन कम किया जा सकता है।
जी एग्जैक्टली, और इसी के साथ अब आपसे आखिरी सवाल जो मैं पूछना चाहूंगी वो यही, अगर आप हमें बता सकें इंडिया की एयर क्वालिटी को सुधारने के लिए क्या कोई इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं जो कारगर हैं, या किन पहलुओं पर हमें काम करने की जरूरत है?
जो हम लोग मोटे तौर पे देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज जो जनरली पॉल्यूशन की बात करता है, उनकी तरफ से काफी इनिशिएटिव लिए गए हैं। एक तो ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए, जिसमें नगर वन की चर्चा हुई है और 200 ऐसे शहरों को अंकित किया गया है जहां पे सिटी फॉरेस्ट को ग्रो किया जाएगा। दूसरा जो इनिशिएटिव है वेटलैंड्स को या इकोसिस्टम को रेस्टोर करने की बात होती है और उसमें भी काफी इम्पोर्टेंस दी जा रही है। थर्ड जो है कहीं ना कहीं ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हम इंडस्ट्रियल बेस्ड सॉल्यूशन बोलते हैं उसके बारे में बात हो रही है। फिर हम कैसे कोल को, जो हमारा ईंधन जो है, मुख्य ईंधन जो है, उसको हम कैसे फेज आउट कर सकते हैं, कैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा सकते हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है कंट्री में। तो ये सारे कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं कि एयर पॉल्यूशन को कम किया जाए या उसके जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं उनकी सोखने की शक्ति बढ़ाई जा सके। तो इस तरह की इनिशिएटिव है
थोड़ा, लेकिन फिर भी हमारी कंट्री की रैंक, इनिशिएटिव तो लिए जा रहे हैं, स्टिल हमारी कंट्री की जो रैंक है वो थर्ड आई है एयर क्वालिटी रिपोर्ट में। तो किन पहलुओं पर सर अब हमें काम करने की जरूरत है?
जो मुझे लगता है कि जो कंस्ट्रक्शन एरियाज में स्पेसिफिकली जिस तरह टेक्नोलॉजी यूज होती है, कहीं ना कहीं हमें नियर टू जीरो डस्ट एमिशन वाली टेक्नोलॉजीज का यूज करना चाहिए। इसी तरह जब हम व्हीकल्स की बात करते हैं, जो लॉन्ग रनिंग व्हीकल्स हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको ज्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए, और थोड़ा सा फ्यूल यूसेज जो है, हम लोग काफी शहरों में हम लोग देखते हैं हम लोग डीजल से पीएनजी में शिफ्ट किए हैं, हमें जरूरत है कि और हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं जो जिनका एमिशन फैक्टर स्पेसिफिकली कम होता है। इस तरह के ईंधन और इस तरह के इंजन की हमें जरूरत है ताकि हम ऑल टुगेदर बेटर टेक्नोलॉजी यूज करें जिससे पॉल्यूशन को कम किया जा सके।
इसमें मैं ये भी आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि लोग ज्यादातर ईवी को प्रमोट करते हैं पॉल्यूशन से बचाने के लिए, क्या आप इसे सही सॉल्यूशन मानते हैं?
जिस तरह से अभी साइंस हमें जिस तरह से बता रहा है, ये एक अल्टरनेट के जैसे आया है। अभी उसकी लॉन्ग टर्म स्टडीज की कहीं थोड़ी बहुत कमी है, इसलिए बहुत ही कंक्रीट वे में कहना थोड़ा सा मुश्किल है। बट की जो स्थिति है कि हम डीजल से पेट्रोल, पेट्रोल से सीएनजी एंड ईवी की तरफ आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव इंडिकेटर जरूर है, लेकिन हमको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म स्टडीज की जरूरत है ईवी व्हीकल्स में, स्पेशली लाइफ साइकिल ऑफ बैटरी और अदर थिंग्स, ताकि हम बहुत ही कॉन्फिडेंस से कह सकें कि वाकई इससे हमारा जो इमिशन रेट है वो ऑलमोस्ट जीरो है।
एग्जैक्टली,
थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। आखिर में बस इतना ही कहूंगी, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के अलावा ये हम सभी का फर्ज भी है कि हम हमारे आसपास, हमारे देश सबको प्रदूषित हवा से बचाएं।
दिस इज एन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।